ओम शांति। सभी माताएं आनंद में हैं, संतुष्ट संतुष्ट हैं, हाथ उठाओ जो जो संतुष्ट हैं। आज पहली चर्चा संतुष्टता पर करेंगे। कौन हो सकते हैं संतुष्ट? जो संपन्न हो और सब खजानों से भरपूर। माताएं बताएं अब संतुष्ट कौन होंगे? कुछ लोग हैं इस संसार में, उन्हें कुछ भी मिल जाए संतुष्ट नहीं होते। बच्चे भी आपने देखे होंगे, कुछ छोटे कुछ भी दे दो तो भी नाराज। मन पसंद चीज मिले तो संतुष्ट। और हमें संतुष्ट कैसे रहना है बोलो, चुप नहीं। भगवान मिल गया सबसे बड़ी चीज, हम संतुष्ट हुए। सत्य ज्ञान मिल गया, हम संतुष्ट हुए। सबसे अच्छी बात विचार करनी है कि हमें भगवान मिल गया तो हम संतुष्ट हुए। चिंतन करेंगे सभी, अपने से ये बात करना बहुत आवश्यक है स्वयं को संतुष्ट करने के लिए। जो जन्म जन्म की हमारी प्यास थी वो बुझ गई, हम संतुष्ट हुए। अपने को ट्रेनिंग देंगे सभी, क्योंकि जब तक हम संतुष्ट नहीं होते तब तक मन एकाग्र नहीं होता। इच्छाएं कोई न कोई निकलती ही रहती हैं। पूर्व जन्मों के संस्कार कुछ भी काम करते रहते हैं। देखो एक बहन का ऐसा फोन आया मुझे, कोई बाहर हैं, कहा पता नहीं क्या हो गया है, मुझे नशा लेने की इच्छा होती है, घर में रहती है। मैंने तो हंसी की कि ले लो। कहा कैसे ले लूं, बाबा मना करता है। देखो कैसे आत्मा को संघर्ष करना पड़ रहा है। ले नहीं सकती, बाबा का ज्ञान है, लेकिन अंदर से जैसे एक बहुत तीव्र इच्छा हो रही है। वो पूर्व जन्मों की इच्छा होती है ना, तो ये पूर्व जन्मों के हमारे संस्कार भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं हमारे ऊपर। इसको हमें भस्म करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे ही। हमें संतुष्ट होना है। मैं बाबा की एक अव्यक्त मुरली पढ़ रहा था इस सीजन की, अभी उसमें था संतुष्टता की धूम मचाओ। शब्द ही ऐसे अच्छे बाबा के, हर हाल में संतुष्ट, हर हाल में संतुष्ट। और इसमें भी बहुत बड़ी चीज है दूसरों को संतुष्ट करना। दूसरे हमें संतुष्ट करें ये बहुत छोटा विचार है, हम दूसरों को संतुष्ट करें ये उत्तम विचार है। माताओं को ख्याल रहता होगा ना, घर में बच्चों को संतुष्ट करें, सबको संतुष्ट करें। सब अलग अलग हैं, सब कोई संतुष्ट मणि नहीं है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो हमें दूसरों को भी संतुष्ट करने को लक्ष्य बना लेना है। कठिन काम है या सहज? ऐसे ही नहीं जैसे बाबा के आगे सब कह देते सहज है। बाबा के आगे देखते हैं ना, होता कुछ नहीं, सब सहज है। सदा खुश रहते हो, रहते हैं, बाहर जाते ही पता चलता है खुशी क्या होती है। ऐसे नहीं, संतुष्ट करना उनके लिए बहुत सहज है जो स्वयं स्वयं से संतुष्ट हैं। ऑटोमेटिकली वो दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। हम लक्ष्य बनाएं, इससे हमें दुआएं भी बहुत मिलती हैं। दो तीन साल पहले ही बाबा की मुरलियों में कई बार आता था खजाने जमा करो, स्वपुरुषार्थ से और संगठन में रहते हुए संतुष्टता से, जिससे एक दूसरे की दुआएं मिलें। सेवाओं में निस्वार्थ भाव, अथक भाव, कल्याणकारी वृत्ति, निष्काम भाव, इससे सेवा करें। ये तीन तरीके बाबा खाता जमा करने के बताते थे। तो संतुष्ट बनना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, सब इस पर बहुत ध्यान दें। हमारे अंदर कुछ उथल पुथल न होती रहती हो, असंतोष की उथल पुथल, यह असंतोष एक चिंगारी है जो जलती रहती है, आंतरिक खुशी को, आंतरिक शांति को नष्ट करती रहती है। हर हाल में संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से भी, बोलो, ढीला हो तो कठिन काम है ये थोड़ा, क्योंकि हरेक की श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की इच्छा होती है। लेकिन हमें इस तरह सोचना चाहिए, गीता में भी ये बात बहुत ही सुंदर है और प्रसिद्ध रही है। अब तो गीता की चर्चा खत्म हो गई 20-30 सालों में, नहीं तो स्कूल कॉलेजों में भी बोर्ड पे बाहर लिखा रहता था, कर्तव्य करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। सुरेश भाई संस्कृत में भी लिखते थे, कर्तव्य करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ की ये गति है कि हमें लक्ष्य ऊंचा रखना है, लेकिन जो पुरुषार्थ हो रहा है उसमें संतुष्ट भी रहना है। आज कमाई हुई, कुछ तो हुई, माइनस में न जाए। लेकिन यहाँ संतुष्टता का ये अर्थ नहीं कि हम आगे पुरुषार्थ नहीं करेंगे। अपने चित्त को शांत रखना है और तेज पुरुषार्थ करना है। एक ऊंचा लक्ष्य और जो पुरुषार्थ हो गया उसे स्वीकार करके उसका पुण्य हमने जमा कर लिया, उसमें संतुष्ट। कुछ तो जमा हुआ ना। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसका बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, पर किसी दिन थोड़ी कम कमाई हुई तो आजकल तो असंतुष्टता होती है, वो टेंशन हो जाती है। रोज 10,000 की कमाई होती थी, आज 8 ही रह गए, 2,000 का घाटा हो गया। आज मनुष्य ये सोचता है 8,000 की कमाई हुई, ये नहीं सोचेगा आज 2,000 का घाटा हो गया। लेकिन कमाई हुई, उसमें हम संतुष्ट हों तो आगे का मार्ग बहुत अच्छा खुल जाएगा। बाबा ने ज्वाला स्वरूप योग की बात हमें बहुत कही है, पहले भी मुरलियों में बहुत आती रही है। ज्वाला स्वरूप को कोई ज्वाला के रूप में हम न देख लें, कोई कठिन काम है। स्वयं को एक संकल्प में स्थित करना, फील करना बाबा की शक्तियों की किरणें मुझे मिल रही हैं। इसको लंबा समय तक अभ्यास करना, एक साथ लंबा समय न भी हो तो बीच बीच में बार बार इसको थोड़ा थोड़ा समय अभ्यास में लाना। बाबा सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। एक संकल्प बस, कभी पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। बस इस स्वरूप में स्थित हो जाएं, किरणों को देखते रहें, तो इससे हमारे संस्कार, विकर्म, विकार सभी नष्ट होते हैं। क्या होता है, जो कुछ हमने किया है या जो संस्कार हमारे 63 जन्मों से हो गए हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं मन की ये स्थिति को अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। आत्मा में 63 जन्मों का, 84 का ही, पर हम अब बात 63 जन्मों की कर रहे हैं, तो 63 जन्मों की गंदगी, संपूर्ण बुरे संस्कार और विकर्म आत्मा में और ब्रेन में रिकॉर्ड हैं, ब्रेन में तरंगों के रूप में, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, इसलिए उसको अनकॉन्शियस माइंड कह दिया। चेतन नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं सूक्ष्म रूप से। उनसे निगेटिव एनर्जी मन को निरंतर मिलती रहती है, जो मनुष्य को बहुत कुछ करने नहीं देती। एक मनोवैज्ञानिक से मेरी बात हो रही थी, उसने ये बताया कि अनकॉन्शियस माइंड से निरंतर निगेटिव एनर्जी आ रही है। मैंने पूछा क्यों, इसका उत्तर उनके पास नहीं था। हम जानते हैं कि हमने 63 जन्म सब कुछ गलत ही तो भरा है ना अपने मन में, उसकी बैड एनर्जी निगेटिव एनर्जी हमको आ रही है, तो वो ब्रेन में प्रिंट है। तो जैसे ही हम सर्व शक्तिवान से शक्तियों की किरणें लेते हैं वो आत्मा में आती है, आत्मा से ब्रेन में फैलती है, फैलने लगती है, और ब्रेन में जो बुरे संस्कार हैं या विकर्म हैं या कोई बुरे विकार हैं उन्हें नष्ट करती है, अग्नि का काम करती है वो। ये शक्तियों की किरणें अग्नि बनकर किचरे को भस्म करती हैं, इसलिए इसे ज्वाला स्वरूप स्थिति, ज्वालामुखी योग ये सब नाम दिए हैं। लेकिन इसके लिए ये आवश्यक है कि हम सारा दिन कुछ ना कुछ अभ्यास करते रहें, ताकि मन निसंकल्प रहे। और उसमें बाबा ने एक बहुत अच्छा अभ्यास बता दिया है अशरीरी होने का। मुरलियां हैं बाबा की कि ये अशरीरीपन आत्मा के लिए मानो इंजेक्शन है। 10 सेकंड भी हम बीच बीच में करते रहें, चमकती हुई आत्मा मैं यहाँ हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, इस तन में अवतरित हूँ, इससे न्यारी हूँ, संकल्पों के साथ करेंगे। ये अच्छे अभ्यास क्यों नहीं होते पुरुषार्थियों को, संकल्प के बिना करते। मैं आत्मा हूँ यहाँ बैठी हूँ बस, तो फट से मन भटक जाएगा। 5-7 संकल्प हम दें इस तरह अपने को, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मालिक हूँ शरीर की, इस तन में अवतरित हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, चमकती हुई ज्योति हूँ, मेरी किरणें सारे ब्रेन में पहुँच रही हैं, संकल्प देते देते लंबा समय स्थिति रहेगी। ये अभ्यास बार बार करेंगे, कोई भी स्वमान का अभ्यास बार बार करेंगे। साथ में बहुत अच्छा एक अभ्यास है जिसपे हमें ज्यादा ध्यान देना है, जो निसंकल्प होने के लिए बहुत बहुत सुंदर अभ्यास है, आत्मिक दृष्टि। सबके मस्तक में चमकती हुई मणि देखना। एक दिन भी हम इसका अभ्यास करके देखे, सारा दिन धुन लगा दें, सब चमकती हुई मणियां हैं, एक ही दिन में शाम तक अनुभव हो जाएगा चित्त कितना आनंदित हो गया, बाकी सभी संकल्प समाप्त हो गए। इस तरह हम इस ज्वाला स्वरूप स्थिति का अभ्यास करें। परंतु एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है, आज मैं एक छोटी सी चीज पढ़ी, मेरे पास एक मैगजीन आती है रामकृष्ण मिशन की, विवेक ज्योति, विवेकानंद की बहुत सारी बातें होती हैं और लेख होते हैं कुछ, उसमें शुरू में 5-7 श्लोक लिखे होते हैं पुराने ग्रंथों के कुछ, जो शंकराचार्य आदि ने लिखे थे। तो उसमें आज एक बात थी कि मनुष्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे उत्तम चीज है अभ्यास, बार बार अभ्यास। बार बार अभ्यास करने से कठिन चीज भी सरल हो जाती है, इसलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति का अभ्यास करने के लिए हम सारा दिन भी बार बार अभ्यास करेंगे। बहुत सारे अभ्यास हमारे हैं, मैं फिर से आप सबको याद दिला दूं, बहुत सुंदर अभ्यास जो इस बार पिछले सीजन में बाबा ने हम सबको बार बार कहा है, 5 स्वरूपों का स्वदर्शन चक्र है ये। इस स्वदर्शन चक्र का कितना महत्व है, मैं आपको एक महाभारत की कहानी सुनाऊं, आप में से बहुतों ने सुनी होगी। युद्ध समाप्त हो गया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा पहले तुम उतरो। नियम ये है कि पहले सारथी उतरता है, फिर वो हाथ पकड़ के महारथी को उतारता है। एंड में श्री कृष्ण ने कहा पहले तुम उतरो, अर्जुन उतर गया। उसके बाद श्री कृष्ण रथ से कूद गए और रथ जलने लगा, घोड़े भी जल गए, रथ भी जल गया। सब आश्चर्यवत होके देखते रहे, ये क्या पूछा श्री कृष्ण से ये क्या हो गया। कहा कर्ण के दिव्य अस्त्रों से ये रथ और अर्जुन और हम कब के जल के नष्ट हो गए होते। मैंने अपने सुदर्शन चक्र से उन सबको रोक के रखा था। ये महत्व है सुदर्शन चक्र का, जिसको अस्त्र के रूप में दिखाया है वो सब हमारे पास है। बहुत सब आत्माएं इसके महत्व को समझें या न समझें, पर ये सचमुच मोस्ट इम्पोर्टेंट शस्त्र हमारे पास है। हम इसका अभ्यास बढ़ाएं। पांच स्वरूप इस बार भी मुरली में है। बाबा ने कहा था पांच मिनट करो, पांच मिनट नहीं हो तो पांच सेकंड जरूर करो, हर घंटे में याद जरूर करो, अपने को स्मृति दिलाओ। स्मृति का ही बहुत बड़ा महत्व है ना संसार में। इस पर हम फिर ध्यान देंगे, अपने को याद दिलाएंगे ज्वाला स्वरूप स्थिति के लिए भी पांच स्वरूपों का अभ्यास सबसे ज्यादा सहयोगी रहेगा। जानते हैं ना सभी पांच स्वरूप, माताएं बताएंगी फटाफट कौन से। अनादि, ठहरो पीछे वाली माताओं को बोलने दो। दूसरा आदि, तीसरा पूज्य, चौथा ब्राह्मण, पांचवा फरिश्ता। इस तरह भी याद कर लेने से मदद मिलेगी। और थोड़ी थोड़ी देर उस स्वरूप को देखने लगे और ज्यादा मदद मिलेगी। एक एक मिनट देखने लगे, चिंतन करने लगे, बहुत सुंदर स्थिति हो जाएगी। अब तीसरी बात, प्रश्न आया है वरदान क्या, कैसे मिलते हैं। बहुत सुंदर टॉपिक है। मैं आपको बाबा की दो बातें सुनाऊं। एक बात है, ये वास्तव में सार है वरदानों के पीछे। जो आत्माएं लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहती हैं, उनकी बुद्धि में वरदानों को धारण करने की शक्ति आ जाती है। वरदान बाबा सबको दे रहे हैं। अगर उसने मुरली में कह दिया सभी बच्चों को वरदान है, बच्चे विजयी भव, तो वरदान मिल गया। लेकिन बुद्धि उनकी धारण करेगी जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं। कभी बाबा ये भी सुनाया करते थे, मोहब्बत में वरदान मिलते हैं, प्यार में वरदान मिलते हैं, भगवान राजी हो जाए तो भगवान वरदान दे देता है। ये तो कॉमन सी बात है, भक्ति में भी यही रहा है। बहुत भक्ति की किसी ने, भगवान प्रकट हुए, राजी हुए और कहा मांगो क्या मांगना है, तथास्तु, वरदान दे दिया। कुछ लोगों ने वरदानों को मिसयूज कर लिया, उनके वरदान उनके लिए विनाशकारी हो गए। भस्मासुर को भी शंकर ने वरदान दे दिया था, जिसके सिर पे हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। शंकर के पीछे ही भाग लिया भस्मासुर, पहले तुम्हें ही भस्म करता हूँ, अनुभव करके तो देख लू होता है या नहीं, आखिर खुद भस्म हो गया। एक ने वरदान मांगा कि जिस चीज को मैं हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। खाना खाने बैठा, रोटी को हाथ लगाया सोना, पानी को हाथ लगाया सोना, सब्जी सोना, अब क्या करूं, परेशान हो गया, कहीं सोने को खाऊं कैसे। फिर भगवान की भक्ति की, कहा वरदान एक ही बार मिलता है, पूरा हो गया। तो वरदान को लेने के लिए अच्छी बुद्धि, ग्रहण करने के लिए लंबे काल का ईश्वरीय नशा। अब 3 साल पहले की बात सुना देता हूं आपको, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। बाबा ने कहा जो वरदान बाबा से लेना चाहते हो, सवेरे उनके स्मृति स्वरूप हो जाओ और दिन में प्रैक्टिकल में उन्हें यूज करो। खुमारी हो जाए, नशा हो जाए कि मुझे ये वरदान प्राप्त है, वर्णन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। वरदानों का यदि वर्णन किया आपने तो वो क्या होगा, गए, गुप्त रखना है उन्हें, लेकिन अंदर में नशा हो, मेरे पास विघ्न विनाशक का वरदान है। अब कैसे करेंगे, साथ साथ कर ले हम अभी, चलो जरा लाल लाइट कर दो भाई दो मिनट के लिए, है लाइट वाला, चलो सफेद में ही करेंगे। हम ऐसा अनुभव करेंगे कि हम सूक्ष्म लोक में हैं। सामने बाप दादा, वरदाता, बाबा ने दृष्टि देते हुए अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और बोले, बच्चे, बाप तुम्हें वरदान देते हैं, तुम विजयी रत्न हो। हम स्वीकार करते चलें, तुम विघ्न विनाशक हो, जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां सभी के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे संकल्प और बोल दूसरों का कल्याण करेंगे। अब हम स्वीकार कर लें इन तीनों को, क्योंकि स्वयं भगवान ने ये वरदान दिए हैं। ओम शांति। दिन में याद रखें, कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है, अपने विघ्न सुनाता है, हम सबसे पहले उसे दृष्टि देते हुए ये याद करेंगे, मेरे पास विघ्न विनाशक का वरदान है। पावरफुल स्मृति होगी, है या नहीं है पता नहीं, होगा या नहीं होगा ये नहीं, मुझे बाबा से विघ्न विनाशक का वरदान मिला है। उसे दृष्टि देते हुए संकल्प करेंगे इसका ये विघ्न नष्ट हो जाए, उसको कुछ सुना भी देंगे, अच्छी बात, प्रैक्टिकल ये वरदान काम करने लगेगा। ऐसे एक एक वरदान को यूज करेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा बाबा का महावाक्य है, वरदान में शक्ति है आग को पानी में बदलने की, माना एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने की, बहुत सुंदर बात है ये। हमें इसका नशा हो जाए, नशे की जरूरत है, जिस वरदान का हमें नशा रहेगा वो काम करने लगेगा। ऐसा हम 7 दिन तक कर लें सवेरे, बाबा का वरदानी हाथ सिर पर और बाबा ने ये वरदान दिए, लेकिन वरदान हमेशा कल्याणकारी, भस्मासुर की तरह नहीं कि मैं किसी के सिर पे हाथ रख दूं और वो भस्म हो जाए, वो नहीं, कल्याणकारी, दूसरों को सुख देने वाले, दूसरों के कष्ट हरने वाले, दुख मिटाने वाले, ऐसे वरदान, उससे हमारा पुण्य बढ़ता जाएगा, वरदानों में भी चमक आती जाएगी और पुण्य भी बढ़ता जाएगा। इस तरह हम वरदानों को यूज करेंगे, लेकिन स्वीकार करना अपने हाथ में। बाबा हमें वरदान दे रहा, हम स्वीकार न करें, ये हमारी गलती हो जाएगी ना, क्यों ना हम स्वीकार करें, भगवान वरदान दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही स्वीकार कर ले, मुझे मिल गया ये वरदान, मिल गया मुझे श्रेष्ठ योगी भव का वरदान, मिल गया, नशे में आ जाएं, मैं श्रेष्ठ योगी हूं, तो योग पावरफुल होने लगेगा, नशे में आ जाए मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूं, तो भाग्य चमकने लगेगा। अब है संस्कारों को बदलने की बात, जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और मुझे सबसे अच्छी बात लगी, आपको भी याद होगी वो बात, समय को समीप लाने की विधि है संस्कार परिवर्तन। मेरे पास आज ही एक ईमेल आया, उसमें 2012 की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। वो किसी अपने ही भाई ने बीके नहीं भेजा है, जो इंटरनेट पे बहुत सारी बातें आती रहती होंगी वो कलेक्ट करके भेजा। उसको पूर्ण विश्वास है कि 2012 के बाद ये दुनिया नहीं रहेगी। माया कैलेंडर वालों ने, माया सभ्यता वालों ने कहा ना, मैं तो इसका उत्तर यही देता हूँ कि माया सभ्यता वालों का कैलेंडर खत्म होगा ना, भारत वालों का नहीं। भारत का कैलेंडर तो अविनाशी है ना। हो सकता है तब उनका कैलेंडर समाप्त हो गया हो, कोई बड़ी सुनामी आई हो, उनका देश डूब गया, तो उनका तो खत्म हो गया ना खेल, उनके लिए महाविनाश हो गया। उन्हें क्या पता कि भारत भी बचा है। आज बाबा ने मुरली में एक अच्छी बात कही थी ना, एटम बॉम्ब तैयार किए हैं, तीन हिस्सा खत्म हो जाएगा, एक हिस्सा बच जाएगा, भारत बच जाएगा, भारत के आसपास भी बच जाएंगे कुछ। तो हम सभी समय को समीप लाएं। विनाश होगा इससे डरने की बात नहीं, हमें अपने को योग्य बनाना है। बाबा के बच्चों को तो खैर विनाश पे निश्चय होता नहीं, अब सच कहता हूं मैं, सोचते हैं बाबा तो कहता ही रहता है। 72 की मुरली थी अभी थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले शायद, उसमें बाबा ने कहा समय समीप आ रहा है, तेजी से तीव्र पुरुषार्थ करो। उस बात को 40 साल हो गए, तो पढ़ने वाले भी कह रहे थे कि देखो तब भी बाबा कह रहा था समय समीप आ गया है। तो ब्राह्मण तो सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, बाबा पे विश्वास करें या ना करें, पर इसका महत्व ये है कि विनाश काल के लिए हमें स्वयं को तैयार करना है। अभी तो इस सृष्टि पे विनाश के बहुत सारे सीन, जय जयकार के बहुत सारे सीन, कहा ना बाबा ने बॉम्बे से आबू तक लाइन लग जाएगी, केवल ब्रह्मा कुमारियों के कोई नहीं बचेगा अखबारों में, अखबार टीवी, जय जयकार का ऐसा रूप होगा कि स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन, एक अलौकिक क्रांति सारे संसार में आ जाएगी। जन जन को मैसेज तो वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन थोड़े बहुत योगी भी सभी बनने लगेंगे, स्वीकार कर लेंगे भगवान मेरा पिता है। तो हमें तैयारी करनी है मरने की नहीं, मरने वालों को जीवन दान देने की। संसार में दुख शांति इतनी ज्यादा फैलेगी कि लोग रात को सो नहीं पाएंगे। मुझे तो अभी से आभास होता है कि अगले 5-7 साल में संसार के 50% लोग रात को सो नहीं पाएंगे, तो हमें उनको सुलाना भी पड़ेगा, सुलाना पड़ेगा वाइब्रेशंस देकर। इसलिए ये वरदान जिसने ले लिए होंगे, मैं मास्टर दुख हरता हूँ, उनकी दृष्टि से, उनके वाइब्रेशन से अनेक आत्माओं के दुख समाप्त हो जाएंगे। जो टेंशन फ्री रहे होंगे लंबे समय से, उनकी वो दूसरों को वाइब्रेशंस देकर तनाव से मुक्त कर सकेंगे। ऐसा महसूस होगा कि किसी ने उनका तनाव खींच के निकाल दिया है। आप में से कुछ को पता हो न पता हो, हमारे ज्ञान सरोवर का भी यही इफेक्ट है। यहाँ जो लोग आते हैं नॉन बीके, कई लोग अनुभव सुनाते हैं कि पहले दिन ही सवेरे आए, दोपहर तक, शाम तक, ऐसा लगता है सारे बोझ, मन की टेंशन कोई ले गया, सिर पे जो भारीपन था जैसे उतर गया। ये वाइब्रेशंस का इफेक्ट है, यहाँ का भी है प्रैक्टिकल में। ऐसा ये विशाल रूप से फैलेगा, तो तो हमें ऐसी तैयारी करनी है। विनाश की बातें हम सुनते हैं, मैं जब भी सुनता हूँ तो मुझे दो ही बातें याद आती हैं। हर विनाश की घटना प्रेरणा देती है, एक तो जो बाबा ने काम दिया सकाश दो इन्हें, दूसरी प्रेरणा कि विनाश अति अति भयंकर होगा, हम अपने को इतना योग्य बनाएं कि हम सबके दुख हर सकें, हम इतना योग्य बनाएं कि उस समय हम संसार के काम आ सकें, लोग जिंदे रहेंगे पर जैसे मुर्दे हो जाएंगे, ये हाल होने जा रहा है। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि विनाश कोई चुटकी बजाते ही हो जाएगा, रातों रात में हो जाएगा, सालों साल चलेगा, विशेषकर भारत में और विदेशों में, क्योंकि जो विकर्म किए हुए हैं वो सब सामने आएंगे। धर्मराजपुरी बन जाएगी ना ये धरती, सूक्ष्म वतन में नहीं, मरने के बाद नहीं, जिंदे ही, मरने के बाद तो कौन किसको देखेगा। हमारा एक भाई बहुत हंसी किया करता था कि सूक्ष्म वतन में बाबा डंडे लगाएगा तो वहां तो डंडे भी लाइट के होंगे, चोट तो लगेगी नहीं, बहुत मजा किया था। वो अब नहीं है, मधुबन में था, बहुत पहले से शरीर छोड़ दिया था उसने, तो सूक्ष्म वतन में नहीं, यही डंडे लगेंगे सबको, क्योंकि सभी को अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही है। हम वाइब्रेशंस दें तो ये दोनों प्रेरणाएं बहुत सुंदर हैं कि जब विनाश काल हो हम संसार के काम आए, संसार के काम आए। देखो एक और गहरी बात आपको सुनाऊं, मुझे ये बात बहुत गहरी लगती है। ये कुछ ब्राह्मणों के साथ घटित होती है बात कि द्वापर युग से भारत में हमारे इतिहास में बहुत सारे हीरो एक्टर हुए जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में भी बहुत सारे हीरो एक्टर हुए जिन्होंने देश की सुरक्षा की, काम आए देश के, जैसे भगवान के काम आए। उसकी जन्मभूमि है भारत। जब जब भारत पे आपदा आई, विशेषकर भारत पे, तब तब काम आए वो। देखो मैं कभी कभी सोचता हूँ ये जो श्लोक है ना गीता का, यदा ही धर्मस्य भवति, उसमें शब्द है ना भारत, अर्जुन को संबोधित किया, हे भारत। क्यों भारत? क्योंकि ये धर्म ग्लानी एक्चुअली भारत में होती है सबसे ज्यादा। तो ऐसे जो एक्टर जो संसार में भारत में भिन्न भिन्न समय पर काम आए, वो सब हम में से ही महान आत्माएं हैं बहुत सारी, जो इस समय संसार के काम आएंगे बहुत, भगवान के काम आएंगे बहुत, वो अनेक जन्म देश के काम आएंगे। इतिहास आप में से किसी ने पढ़ा हो, अनेक बार विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर अटैक किए। आप चाणक्य से बहुत अच्छी तरह परिचित हो, आप जानते हैं अगर चाणक्य उस समय न होता तो भारत तभी गुलाम हो गया होता। जो अब से 800 साल पहले हुआ था वो 2500 साल पहले ही, 2200-2300 साल पहले ही गुलाम हो गया होता, लेकिन उसकी नीतियों ने आक्रमणकारियों को हरा दिया। योद्धा कोई और थे, चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन नीति थी चाणक्य की, तो सब हार मान गए उसके सामने। उसकी कूटनीति इतनी जबरदस्त थी कि बड़ी बड़ी सेनाएं हार मान जाती थी। ये हीरो एक्टर है ना, देश के काम आए। चाणक्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, चालाक नहीं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान। तो ऐसे जो भगवान के काम आएंगे, अंत में जो संसार के काम आएंगे, वो जन्म जन्म के लिए हीरो एक्टर्स बन जाएंगे। तो हम सभी विनाश की बातें जब सुनते हैं, अब सुनते ही रहेंगे, तो दो चीजों पर बहुत ध्यान दें, हम अपने को इतना योग्य बनाएं, ईश्वरीय शक्तियों से इतना भरपूर करें, अपने अंदर सुखों के भंडार इतने भर लें, शक्तियों से अपने को इतना सजा दें, प्योरिटी से इतना श्रृंगार कर लें कि हमारी दृष्टि, हमारे संकल्प, हमारे वाइब्रेशंस संसार को कष्टों से मुक्ति दिला सके। पसंद है माताओं को, कर सकते हैं ऐसा? उलझने नहीं, केवल अपने घर में उलझ के रह जाए, बच्चों की समस्या, इसकी समस्या, उसकी समस्या, ये तो है। एक बहुत अच्छी बात लास्ट आपके सामने, जो ग्रस्त में रहते हैं उनके लिए, जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ रहते ही हमें उन्नति का मार्ग ढूंढ लेना है, क्योंकि उनके साथ हमें रहना ही होगा। कर्मों का हिसाब किताब ही ऐसा है। अभी एक कुमार का ईमेल आया मेरे पास आज ही, कहा मेरी माँ बस भक्ति बहुत करती है रात दिन, लेकिन अहंकार, क्रोध, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा है। मधुबन में भी लाया, शिविर कराया, कोर्स भी कराया, लेकिन सोचती है ये ब्रह्मा कुमारियां भी तंत्र मंत्र कर रही हैं, इनका ये तंत्र मंत्र है, उसको कोई तकलीफ हो, किसी ने मेरे पे तंत्र मंत्र कर दिया है। कहा हम उसको हॉस्पिटल में भी नहीं ले जा सकते, नहीं तंत्र मंत्र कर दिया किसी ने। कहा इतनी दुखी, इतनी लड़ाकू, कहा मेरी इच्छा होती है मर जाऊं, क्या करूं मैं सकाश देता हूं उसको, कभी कभी दो तीन दिन काम चलता है फिर खत्म हो जाता है, इसकी सकाश फेल हो रही है उसके सामने। मैंने उसे फोन नंबर ही लिख दिया कि मेरे से बात कर लो डिटेल में, देखो उसके ही साथ उसको रहना है, लेकिन उसको अपना मार्ग निकालना है कि वो डिटेच रहकर उससे ऊपर उठ जाए, ताकि उसके छोटे मोटी बातें, उसके शब्द इसको घायल न करे, घायल कर रहे हैं, नींद नहीं आती इसको, मरने की सोच रहा है। देखो छोटा कुमार है, एक ही लड़का उसको, और माँ उसको मरने के लिए विवश कर रही है, जब वो मर जाएगा फिर रोएगी, पागल हो जाएगी, मेरा एक ही बेटा था मर गया, ये नहीं पता मैंने ही मार दिया। तो सभी ध्यान दें, जहां हम हैं, जिन स्थिति परिस्थितियों में हैं, जिनके साथ हैं, वहीं से निकलकर ऊपर चलना है। हम बदलेंगे तो वो परिस्थितियां बदल जाएंगी, उनको बदलने की इंतजार करेंगे न वो बदलेंगे, न परिस्थिति बदलेंगी, न हम बदलेंगे, खेल बिगड़ता जाएगा। तो सभी फिर से रिवाइज कर लें, तनाव मुक्त रहना है, सकास देनी है, दो बार तो अवश्य सवेरे और शाम, पांच स्वरूपों का अभ्यास करना है। हमारा एक एक संकल्प और एक एक सेकंड बहुमूल्य है, उसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा हम सबको देखना चाहते हैं, मेरा हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी हो, याद है आखिरी मुरली में, ये सब बातें हमें निरंतर अभ्यास में लानी है। ओम शांति।